मंगलमय मंगल करम वीतराग विख्या नमोताहि जाते भई अर्हंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन में अच्छाइयाँ लाना चाहते हैं और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले कई दिनों से लगातार इसी बात पर हम विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी दृष्टि मिले, हमारे भीतर एक ऐसी समझ आए जिससे कि हम अपने जीवन की बुराइयों को निष्कासित कर सकें और अच्छाइयाँ तो हमारे अपने भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान ही हैं। हमें तो सिर्फ बुराइयों को हटाना है ताकि वे जो हमारे भीतर की अच्छाइयाँ हैं वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो सकें। यदि वास्तव में हमें एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा हो जाती है और हम निरंतर अपने भीतर संचित बुराइयों को निकालना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन, हम स्वयं देखेंगे कि वो निरंतर अच्छा बनता जाता है। कई बार लगता है कि कैसे काल में और कैसा उपादान लेकर के हम आए हैं जहां हमें बहुत प्रबल आत्म कल्याण के निमित्त तो नहीं मिलते पर जो भी निमित्त हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के मिलते हैं उनके मिलने पर भी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोई प्रयत्न भी शुरू नहीं कर पाते हैं। काल को क्या दोष दें, अपने उपादान की कमजोरी है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने व्यवहार में, हम अपने आचरण में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला नहीं पाते हैं। चाह करके भी हमारा जीवन जैसा पाप से लिप्त है वैसा ही हम जीने के लिए मजबूर हैं। मानो रोज विचार भी करते हैं, बाह्य में कुछ क्रियाएं भी करते हैं लेकिन वह विचार और क्रियाएं दोनों ही हमारे जीवन को पवित्रता की तरफ ले जाने या कि बुराइयों से बचाने में सफल नहीं हो पाती। कारण क्या है? कहीं कोई एक भीतर गहरी मूर्छा है। बाहर बाहर थोड़ी बहुत क्षण भर को जो जागृति आती है वो उस भीतर की मूर्छा को तोड़ नहीं पाती है। आचार्य भगवंतों को इस पर आश्चर्य होता है और वे अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए स्वयं लिखते हैं कि जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुख विशेषु न बुरज जई अहो सुबद्धो माया गंठियो। अरे ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहां जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों के अलावा मैंने कौन सा सुख पाया है, इसके बाद भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, पापों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो इदम आश्चर्यम, इसमें आश्चर्य है, और वो कारण क्या है? अहो सुबद्धो माया गंठियो, ये मोह की, ये मिथ्यात्व की ग्रंथि बहुत सुदृढ़ है। ये जो मूर्छा हमारी है वो बहुत गहरी है, जिसमें हम संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को जान करके भी जागृत नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कोई हमें जगाए और हम ना जागें, ऐसी स्थिति भी नहीं है हमारी, हमें तो कोई जगाता है और हम इस धोखे में कि हम जाग गए हैं फिर भी सोए पड़े रहते हैं। बचपन में करते थे ऐसा कि माँ जगा देती थी और अपन पड़े रहते थे, माँ कहती थी कि उठ गए कि नहीं, तो उठना बात की बात है, जागा तो हूं मैं, उठूंगा नहीं लेकिन तय करके बैठा हूं। जाग जाते हैं हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाकर के, लेकिन उठ नहीं पाते। इसलिए जागता उत्तिष्ठा, ऐसा लिखा, जागो और जाग करके उठो तब काम बनेगा। अकेले हम जाग तो जाते हैं लेकिन हम अपने आचरण को ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, हम अपनी मूर्छा को तोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वहीं पड़े रहते हैं तो फिर से मूर्छा आ जाती है, फिर से हम गाफिल हो जाते हैं। एक राग छूटता है दूसरे राग में उलझ जाते हैं। वीतरागता हमारे जीवन में, जो कि हमारी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, उसका एहसास ही नहीं हो पाता है। उस मूर्छा के लिए बहुत सहज सा एक उदाहरण आता है कि एक युवक किसी साधु के पास पहुंचा था कि संसार से मुक्त होने का क्या उपाय हो सकता है, अब वो क्या समझाएं। उन्होंने कहा, मेरा एक काम करो, तुम थोड़ा सा अपना ध्यान एकाग्र करने की विद्या सीख लो पहले। उसने कहा, ठीक है सिखाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें उस गुफा के भीतर जाकर ध्यान लगाना है और निरंतर एक ही विचार करना है कि तुम बारहसिंगा हो गए। बड़ा अजीब है, पशु तो मनुष्य बनने की कोशिश करता है और ये बाबा जी कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा विचार करो कि मैं बारहसिंगा हो गया हूं, बड़े बड़े सींग हैं मेरे। ठीक है, जब बाबा जी कह रहे हैं और वे संसार से मुक्ति का उपाय बताएंगे तो कर लेते हैं उनकी बात। तो सुबह से बैठा वो, सारा दिन व्यतीत हो गया, एक ही माला फेर रहा है निरंतर, मैं बारहसिंगा हो गया हूं। सारी रात भी गुजर गई, एक ही विचार चल रहा है, दूसरे दिन भी और दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन दोपहर में अचानक जो है, और बाबा जी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी, और वो भी जैसे कोई पशु कराह रहा हो। तो बाबा जी पहुंचे गुफा के द्वार पर, तो देखा कि वो नवयुवक तो ध्यान में लीन है लेकिन बारहसिंगा के समान आवाज उसकी निकल रही है और व्यथित होकर के, और ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे कि वो निकलना चाहता है और निकल नहीं पा रहा है। वो उसे हिलाते हैं, उसे जगाते हैं, उसका ध्यान टूटता है, तब तो उससे पूछते हैं कि तुम इतने व्यथित होकर क्यों कराह रहे थे। तो उसने चारों तरफ देख करके कहा कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं बारहसिंगा हो गया हूं और मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हो गए हैं, अब जब गुरुजी आवाज देंगे तो इस गुफा के इतने छोटे से द्वार से निकलूंगा कैसे, ये मेरे तो सींग फंस जाएंगे उसमें। तो मैं बड़ा बेचैन हो रहा था, तब शायद हो सकता है कि मेरी कराह निकल गई हो कि क्या करूं, फंस गया हूं इस गुफा के भीतर। आया समझ में? निरंतर निरंतर संसार के सुखों में ही सुख मानने का भ्रम पाल लेने वाला व्यक्ति फिर आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आंखों कष्ट दान, तब फिर अपने आत्म कल्याण के लिए जो बुराइयों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती वो कष्टकारी मालूम पड़ती है, और जैसे ही थोड़ा सा कष्ट लगता है फिर वहीं खिसक के आ जाते, फिर अपना ज्यों कहते हो भैया चलन दो महाराज की, कहा महाराज को तो जिंदगी वही करने, हमने तो देख लो दो ही तीन दिन परेशान हो गए, हम तो हमें नहीं करने कछ। वो एक गहरी मूर्छा है जो क्षण भर को टूटती है, लेकिन पुनः ठीक ऐसे ही जैसे कि उस बारह सिंगे नहीं होने के बावजूद भी उसे वैसा एहसास हुआ, ऐसे ही हम जिस पर्याय में पहुंच जाते हैं उस पर्याय को ही अपना मान करके, मैं मनुष्य हूं, मैं तिरंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं वास्तव में क्या हूं ये भूल करके और नाना रूपों में ही मूर्छित होकर के, ये गहरी गाफिलता है, ये मोह है, यही मिथ्यात्व है। उसी के साथ जो एक रूपता हमारी आ जाती है, हम अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लेते, फिर मनुष्य हो गए तो मनुष्य में भी अकेले मनुष्य से थोड़ी काम चलता, फिर मनुष्य में भी मैं किसका माँ हूँ, किसका पिता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा साहब हूँ या कि ऑफिसर हूँ, फिर ये एक मूर्छा, गहरी मूर्छा। और इतना ही मूर्छा होती, इतना ही नशा होता तो भी ठीक था, फिर धन पैसा होगा उसे उसका नशा, फिर पद प्रतिष्ठा मिल गई तो उसका नशा, कितने सारे नशे हैं। एक तो मोह का नशा पहले ही था जिसमें गाफिल थे, जिसमें अपने स्वरूप को भूल गए थे, और फिर इसके बाद सांसारिक इतने नशे हैं, उन सब में अगर हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को भूल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अचरज तो नहीं है, पर क्या हम इसी तरह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके और संसार में जीवन व्यतीत करते रहेंगे? नहीं, हमने तो सोचा यह है कि अपने जीवन को इस सब से ऊपर उठा करके और अच्छा बनाएंगे, तब फिर जरूरी क्या है, मुक्ति के लिए जरूरी क्या है? एक ही चीज जरूरी है कि मैं अपनी उस गाफिलता को, मैं अपनी उस मूर्छा को तोड़ दूं। मूर्छा परिग्रह, आचार्य भगवंतों ने इसीलिए उस मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। परिआसमंता चित्तम गृह्णाति इति परिग्रह, जो हमारे चित्त को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी ग्रिप में हम आ जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक वैभव क्या है, हमारी वास्तविक संपदा क्या है। हम तो उसी बाह्य धन संपदा को ही अपना मान करके, उसी में गाफिल हो करके, उसी में सुख मान करके अपना जीवन उसी के संचय में, उसी के अर्जन में, उसी के संवर्धन और संरक्षण में और उसके वियोग में दुखी हो करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये मूर्छा पहले मुझे किसी भी चीज के संचय के लिए प्रेरित करती है, अर्जन के लिए, संचय हो जाता है तो उसके संरक्षण के लिए मुझे प्रेरित करती है ये मूर्छा, फिर संरक्षण के साथ साथ संवर्धन की आकांक्षा तो बनी रहती है। कल तक सोचते थे कि चार चीजें हो जाएंगी तो मैं तो बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन चार चीज हो जाने के बाद वो जो पांचवी चीज है वो मन को असंतुष्ट करती है, तो संवर्धन वो जो प्राप्त है उसको और बढ़ाने की, और उसमें से थोड़ा सा भी घट जावे तो उस बात की पीड़ा कि कब ये पूर्ति होगी, इस बात की चिंता। अर्जन की, संरक्षण संवर्धन की, और उसके अभाव में फिर एक नई चिंता कि कैसे फिर अर्जन हो। इस तरह हम उस मूर्छा के चलते इन बाह्य चीजों में ही लिप्त रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सारे जितने भी दोष हमारे भीतर आते हैं, जितनी भी बुराइयां हमारे भीतर संचित होती हैं, उसका कारण सिर्फ इतनी ही चीज है, यही मूर्छा है। वस्तु, व्यक्ति और इस संसार के प्रति, इन संयोगों के प्रति जो हमारी मूर्छा है उसे हम घटाएं, तभी जाकर के हम इन सब पापों से बच पाएंगे। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे, और कोई व्रत ले चाहे न लो, एक व्रत ले लो परिग्रह का परिमाण। वाह्येषु दशसु वास्तुषु ममत्वमुत्सज्ज निर्ममत्वरता स्वस्था संतोष परा परिचित्त परिग्रहात विरता। वाह्य में जितने प्रकार की भी, जिनको हम परिग्रह कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं, जिसमें वास्तु, क्षेत्र, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, ये सब आते हैं। बाह्य से दशसु वास्तु ममत्व मुत्सृज्य निर्ममत्व रहता, इनमें ममत्व नहीं रखना, इनसे निर्ममत्व होकर के, अभी बताऊंगा कि कैसे निर्ममत्व भी होकर के इन चीजों के बीच रहा जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सहसा इन सब चीजों को छोड़ दें, इनमें जो हमने अपना ममत्व भाव आरोपित कर रखा है, इनमें जो मेरेपन का आई एंड माइंड, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और इनके माध्यम से ही, और मैं संसार में सारे पाप करता हूं एकमात्र धन संचय के लिए, एकमात्र पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, और व्यक्ति उस लोभ में, उस लालच में, उस मूर्छा की वजह से सारे पाप करता है। कोई चोरी करने के लिए चोरी नहीं करता, धन संपदा बढ़ाने के लिए चोरी करता है। कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने के लिए, हिंसा नहीं करता, हिंसा के लिए, सब इसी के लिए, चार पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, उस परिग्रह के लिए, उस आसक्ति की वजह से, उस ममत्व की वजह से, सारे पापों के लिए एक ही अगर हम व्रत ले लें कि मैं परिग्रह की सीमा करके अपने जीवन को बिताऊंगा, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, और सरल भाषा में कह दिया कि अपनी शक्ति का विचार करके और थोड़ा परिग्रह रखना। शक्ति का विचार करना मतलब मेरे पास तो बहुत धन संचय करने की शक्ति है, मेरे पास तो बहुत क्षमता है, आप कह रहे कि शक्ति विचार। वहां शक्ति विचार का मतलब है अपनी आवश्यकता का विचार करके, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना, परिग्रह थोड़ो राखे। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जावे कि मुझे जितना आवश्यक है उतना तो रखूंगा और उसके अलावा बाकी सबसे मैं सबका त्याग कर दूंगा, और जो रखूंगा उसमें भी ममत्व भाव नहीं रखूंगा, तब भी रखा जा सकता है। सारी चीजें रखी जा सकती हैं लेकिन ममत्व भाव उसमें ना रहे, ये अंतरंग की साधना है। क्योंकि दुख का कारण मेरे अंतरंग का ममत्व भाव है, वस्तुएं दुख का कारण नहीं बनती है। नया वत्थु दोदु बंधु अज्जवसानेन हवदि बंधु। आचार्य कुंद महाराज के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं कि भाई वस्तुओं में अपने सुख दुख को मत मानो, वस्तुओं के प्रति जो ममत्व भाव है वो हमारे सुख दुख का कारण है, ये प्रकट में दिखाई भी देता है। रोज अपन इस चीज को देखते भी हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सबको मालूम है कि मकान खरीदा था, रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी, उतने में आग लग गई थी, सुकित्ते रोए थे, और लड़का ने आके कही कि अबे कौन अपनी रजिस्ट्री भाई, जो कौन अपना मकान आए। सो फिर आंसू पहुंच ले और हंसन लगे, और मकान जो को तो जल रहो, पहले भी जल रहो तो अभी भी जल रहो, मनो पहले मकान के जले से भीतर कछू जल रहो, तो कैसे ममत्व तो था कि ये मेरा है, और जिस क्षण लगा कि अरे अपनी रजिस्ट्री नहीं भाई, जो अपना थोड़ी है सो जल जाए सो जल जाए, अब कोई दुख नहीं है। ये अपन सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। यह जो मैं अपना ममत्व भाव उसमें डाल देता हूं तब वो वस्तु मेरे सुख दुख में कारण बनती, और कोई कारण नहीं बनती। सेठ जी के यहां पर नौकर काम करता था, झाड़ू पोंछा करता था। सो एक दिन जो है झाड़ू पोंछा करते समय और उसके हाथ से दीवाल पे लगी भाई घड़ी जो है नीचे गिर गई, अब गिर गई सो टूट गई। अब सेठ जी संजा को आए, सुन से कहा कि सेठ जी अब गलती हमारी माफ करना, झाड़ पहुंच करते समय जो है वो घड़ी नीचे गिर करके टूट गई। सेठ जी समतावान थे, उनने कहा ठीक है, पर थोड़ा दुख तो उनको भी हुआ, तो कहा कि भाई ठीक है टूट गई, हमें अपने विवाह के समय पर ये मिली थी, हमारा इससे थोड़ा अधिक लगाव था इसलिए थोड़ा दुख तो है, और फिर अपने काम में लग गए। भोजन वगैरह से निवृत्त होकर के बैठक में बैठे थे और वहीं पर नौकर भी बैठा था, तो चर्चा में उससे कहते कि वैसे भी घड़ी तो बहुत पुरानी हो गई थी, हमारा वैसे भी मन था कि नई ले लेंगे, इसको अलग कर देंगे, पर हमने तो ये भी सोचा था कि अब कौन कौन देवे, तो हमारी इतनी सेवा करते सो हमने सोचा था कि तुम्हें कौन दे देंगे। अब तो सेठ जी को तकलीफ थी कि घड़ी टूट गई, और नौकर जी को कछु तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब अगले क्षण से रात ठीक नहीं बीत पाई कि देखो ने टूटती कहूं तो हमें मिल जाती। सेठ जी कह रहे थे कि हमारे मन में तो था कि हम तुम्हें दे देंगे, जैसे ही ये भाव आया कि ये मेरी हो सकती थी या कि मेरी है ये वस्तु, वैसे ही उसके संयोग और वियोग का सुख और दुख हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। ये बहुत सहज सी अपन अपने जीवन में अनुभव करते हैं बात। उस ममत्व को अगर हम हटा लें वहां से, तो वस्तुएं कभी हमारे सुख दुख में सहायक नहीं होती, वे तो सिर्फ हमारे ममत्व की वजह से, और हमें लगने लगता है कि ये वस्तु सुख में कारण बनती है, ये वस्तु दुख में कारण बनती है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने परिग्रह संचय का नाम नहीं लिखा, मूर्छा का नाम परिग्रह लिखा। जितना ममत्व भाव है, जितनी आसक्ति उतना परिग्रह, जितनी चीजें हैं उतना परिग्रह नहीं। गति शरीर परिग्रह भी मानतो ही ना, जब देवों का वर्णन करते तो कहते हैं कि उनके परिग्रह घटता चला जाता, तो आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि उनका उनका सब जो है वैभव बढ़ता चला जाता, जितने ऊंचे देव हैं उनका उतना वैभव उतना ठाट बाट है, वो कह रहे परिग्रह कम होता जाता। कहते हाँ, मूर्छा उतनी ही कम है, भले ही ठाट बाट बहुत हो। ठीक ऐसा ही हम अपने जीवन में इस भाव को ला सकते हैं कि सारी चीजों के बीच रह करके भी उनसे अलिप्त रहने की साधना कर सकते हैं। विनोबा के आश्रम में एक नियम हर एक को पालन करना पड़ता था कि सारा भोजन करेंगे उसके बाद में नीम की चटनी खाएंगे। गांधी जी का प्रयोग था, ये सत्य के प्रयोग में ये चीज थी। सब कुछ खा लिया उसके बाद में अब बिल्कुल कड़वी चीज वो खाओ खुआओ सबरो कैसा हो गया, उसके प्रति जो मूर्छा थी वो घटे बिना नहीं रहेगी। जितनी मूर्छा से वो भोजन किया था, जितनी आसक्ति से किया था कि वाह क्या स्वाद है क्या, और फिर उसके बाद में वह चटनी संग खात गए वो की नीम की, तो क्या हुआ फिर? ये प्रयोग थे, इनके मायने क्या था कि जिन चीजों में मेरी मूर्छा हो सकती है उनसे कैसे मैं अपनी मूर्छा हटाऊं और क्या की घटाऊं, ताकि मैं उन चीजों का सिर्फ उपयोग करूं। बिना ममत्व के भी उपयोग किया जा सकता है, ममत्व पूर्वक तो अपन उपयोग कर ही नहीं पाते वस्तु का। देख लो आप, नए वाले कपड़ा सिलवा के ले आउत जोन, जब तक घरे ने आए थे जब तक आकुलता हती के आ जावे, दुकानदार के जब से देखी थी वह डिजाइन, जब से ही मन में हती के चार पैसा अपने जुड़ जाए हैं, सो जा चीज डेले हैं सो ले लई, ले लई बनवा भी लई धरी है, अब पहन लू। अबे नहीं, अबे तो वो फंक्शन हुई है, जो फंक्शन वो मैं पैर। हाँ अब बताओ, मैंने उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते जिस चीज में भारी ममत्व है, जी अत्यंत आसक्ति है, जिस वजह से उसका उपयोग नहीं कर रहे, रखे हैं बंदरिया में संवार के, हाँ कि खराब नहीं हो जाए। और पेन के भी आएंगे, पहली बार पेन के आएंगे तो आजू बाजू देखते रहेंगे कि कोई देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, और नीचे साफ सुथरा है कि नहीं बैठे, मने अपन को धक्का लग जाए तो लग जाए, बुस साइड को धक्का नहीं लगे, ये सब भाव है तो उस समय आप विचार करके देख लेना, हम झूठी कह रहे हो तो पकड़ लेना। कैसा अपना मन, मने मन की ये मने परिणति देखो, है तो सहज सी बात लेकिन मन की कैसी विचित्र गति है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जब ज्ञानी की तरह अपन इसको देखते हैं, अज्ञानी को तो पता ही नहीं लगता कि ऐसा हो रहा, जब ज्ञानी की दृष्टि से देखते तो सहज भाव से लगने लगता, हंसी आ जाती, करे देखो कैसा व्यवहार है मेरा, इतनी छोटी सी चीज कितने संभाल करके मैं रखी हूं, क्या होने वाला, एक दिन यही पुरानी हो जाएगी, फेंकने लायक हो जाएगी, आज जिसको मैं संभाल संभाल के रखा हूं, व्यर्थ ही मैं इसमें आशक्त होकर के अभी इसमें सुख मानता हूं, कल के दिन ये चीज खराब हो जाएगी, मेरे से बिलग हो जाएगी तो दुखी होऊंगा, मैं व्यर्थ ही सुख दुख का उपाय अपने हाथ से कर रहा हूं। अरे ये हंसी आएगी इस पर, वैसे नहीं आती। इतना विचार जो है, हम तो पहले अपने जीवन की बता रहे कि मताई ने चार चीजें परसी, सब सुजा रोटी है जा दाल है जा, और रसगुल्ला भी परसे, हाँ बहुत प्रिय थे, सो सबसे पहले बेई छोड़े हमने, हाँ नहीं उसमें तो क्या बात है, उसमें अपने कोई छुपी हुई चीज थोड़ी, अपने भीतर की कमजोरी निकालने का ही तो अवसर है मिला, और क्या सबके भीतर है, उसके भीतर कौन सी होगी, किसी को मिर्ची की शौक हो तो वो के बिना नहीं भोजन चलता जी, सबकी अपनी अपनी आसक्ति है, इसमें क्या कोई छुपा के चलता है, मैं छुपाना जानता जब मुझे साधु समझता, आज के समय में तो जा है, हाँ शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, अगर मैं निश्चल होकर के अपने भीतर की कमजोरियों को एनालाइज करने लगूं तो लोग कहेंगे अरे ये कैसे हैं, और अगर मैं छुपाए रहूं और भीतर भीतर सब रखे रहूं तो साधु कहलाऊं, हाँ बहुत ऐसे ही बोलता हूं सीधा सीधा। अपन सबके साथ यही है, ऐसी मायाचारी से बचना चाहिए, जो अपने भीतर है
ठीक है, मुझे उसको निकालना है, मेरी कमजोरी है। सुखा करते थे सबरो भोजन, आप तो नहीं करत हुई हो आप, अब हम तो जैसे थे सो थे। अब वैसे और कई जने भी काम मिल जाए कि हमसे ही करते हैं ऐसी बाद में, क्या करते हैं अपन, छोटे बच्चे तो करते ही हैं बचपन में, पहले सब चीजें खा ले हैं, मनो भी रसगुल्ला पहले नहीं खाए एकदम, ये सब खाने के बाद फिर धीरे से, और फिर वे भी कब है जब दूसरे छोटे भैया ने या बहन ने अपने खा लाए, फिर वो के बाद वो को दिखा दिखा के कि देखो हमारे पास अभी रखे हुए जी, क्या चीज है जी, कितनी मूर्छा है उस चीज के प्रति, उसका उपयोग नहीं करने देगी मूर्छा, मैं ये कह रहा हूं। जिसकी जितनी आसक्ति है वो उपयोग नहीं कर सकता, उपयोग करने वाला तो उसको पहले मूर्छा तोड़ेगा। दान इत्यादि देना ही वास्तव में उपयोग है वस्तु का, अपने भोग विलास में ले लेना तो वस्तु का दुरुपयोग है, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि उपयोग तो वही कर सकता जो अनाशक्त होगा, वही चीजों का सदुपयोग करेगा, बाकी सब तो उसके लिए। एक पंडित जी थे कटनी वाले, सो कहते कि जब इतनी अच्छी है रसगुल्ला तो अच्छो लगत है तो खा खाए दी मिठा खाई दी तू को ऐसा बोलते थे वो, बिल्कुल सीधा सीधा कहते कि बहुत अच्छो लग रहा हो, सब बातें अच्छी हैं, कह रहे कि जी तो इतनी अच्छी चीज ही नहीं तो फिर खा क्यों लेती हो, फिर इतने ही नहीं कहते थे, खा लेती कहते मिठा काय को देती हो, वो खराब अब उतरी घाटी हुई माटी, अबे जोन वो जीप पे अच्छो लग रहा है इतने से नीचे उतर जाए फिर बाहर निकाल के कहो के अच्छो है, फिर क्यों फेंक भी लाख है, ये क्षण के अंदर जो है जिस चीज में अभी मुझे अच्छा मालूम पड़ता था अगले क्षण वही छूने के योग नहीं रही, ये मेरी आसक्ति और उसका काम है और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा विचार मन के भीतर आ जावे तो क्या होगा, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक चीजों का उपयोग करूंगा, उनमें आसक्त नहीं होऊंगा, और जितनी उपयोग में आएंगी उतनी ही रखूंगा, आसक्ति बस ही ज्यादा रखता हूं, और जिस दिन मेरी आसक्ति घट जावे तो जितनी आवश्यक है उतनी ही रखूंगा। विनोबा को जो है 13 महीने के लिए सत्याग्रह में जेल जाना पड़ा, सो जेल में रहे। अब जेल में क्या मिलता है, भले अच्छे कैदी थे वो, सत्याग्रही थे, भारत जब उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था 1945 के अंदर, तब जो है 13 महीने तक क्या मिला, एक बिछाने के लिए कंबल, वो ही ओढ़ लो वो ही बिछा लो, और एक लोटा पानी पीने के लिए, एक अपने दैनिक कार्यों के लिए, ऐसे करके कुल उनके पास में 10-15 चीजें मिली थी जेल में। अब 13 महीने रहे, जीवन व्यतीत किया, और उसमें भी और अन्य कैदियों को धर्म की बातें सुनाया करते थे, गीता पर प्रवचन उनके 13 महीना जेल में ही हुए, ये ध्यान रखना। हाँ, और वहां पर उनके लिए बस इतनी सुविधा थी कि किताबें जरूर उनको दे दी जाती थी कि आप किताब पढ़ सकते हैं। कहते थे कि अच्छा हुआ जेल में हमारे चिट्ठी वगैरह बाहर भेजने का निषेध है, और अच्छा रहा सबसे संपर्क भी दूर। अब जब आश्रम लौटे 13 महीने के बाद पवनार में वर्धा में, तो वहां पर सबसे पहला काम आते ही साथ क्या किया, सब चीजें जो अपने कमरे में एक्स्ट्रा थी जो आज तक लगती थी जरूरी वे अब लगने लगी एक्स्ट्रा, उनको अलग करने लगे, उतनी चीजें रख ली जितनी जेल में थी। लोगों ने कहा बाबा अब तो जेल से आप आश्रम में आ गए हो, अब क्या भूल गए आप कि जेल में हो, कहती नहीं अब तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे आवश्यक कितना है, मेरे 13 महीने अगर उन 10-15 चीजों में व्यतीत हो गए तो इसका मतलब है इससे ज्यादा चाहिए नहीं, व्यतीत इतने में ही हो जाएगा, अब जीवन भर भी इतना ही रखूंगा। ये है परिग्रह परिमाण की भावना, जिसको आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते इच्छा परिमाण नामापि, अपनी इच्छाओं का सीमन परिसीमन कर लिया है तो बाहर से चीजें बहुत अनावश्यक मालूम पड़ने लगेंगी, ये तो आप ले लो ये आप ले लो मुझे क्या करना है, मेरे उपयोग की चीजें तो मेरे लिए उतनी ही हैं जितनी बहुत आवश्यक है। ऐसा अपने मन में सहज रूप से अपन चाहें तो विचार कर सकते हैं और परिग्रह का परिमाण ले सकते हैं। अगर परिग्रह का परिमाण ले लिया तो मानिएगा सारे पांचों अनुव्रत हमारे जीवन में आ सकते हैं, एकमात्र परिग्रह परिमाण ले लेने से। थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, नहीं तो अनंत हैं इच्छाएं भैया, कभी पूरी नहीं होंगी। कितना धन संपत्ति हो जावे कभी पूरी नहीं होगी। गोटे गांव के एक व्यक्ति सुनाते थे, कहते बंटवारा भाव तो भइयों को, सो हमें दुकान मिली थी और 65 रुपया की सिलक मिली थी, सिलक मतलब क्या कहते उसको, हाँ पूंजी, उतनी हती। उसमें जो है फिर दुकान अपनी शुरू करी, कुछ नहीं मिला था, ये सोच करके कि कुछ नहीं मिला ऐसा लगता था, दुकान चल पड़ी। अब कहते हैं कि अब मुश्किल हो गई, अब तो मैं दुकान पर पैसा कमाने वाली मशीन हूं, मैं आदमी नहीं रह गया, ऐसा बोलते हो। अब धर्म ध्यान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इतनी अधिक लोलुपता धीरे धीरे। पहले जब काम 65 रुपए में भी चलता था, आज 65 लाख रुपए में भी नहीं चलता, फिर भी लगता है कि और होते तो अच्छा रहता। लेकिन उन्होंने उसी क्षण एक नियम ले लिया, सबसे बड़ा नियम, मैं तो उसको बड़ा नियम मानता हूं, कि या तो दान बोलेंगे नहीं, और अगर दान देंगे तो उसी क्षण दे देंगे। सभा में जाते हैं और जितनी धनराशि सोच के गए हैं इतनी देनी है, उतनी पॉकेट में रख के ले जाते हैं। 1 लाख 2 लाख भी देना है तो पॉकेट में रखे रहेंगे 2 लाख रुपए, चेक बना करके कि ये है 2 लाख रुपए, और आज अनाउंस जब भी होगा तो उसमें कोई बोली वगैरह होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो ऐसे भी मुझे देना है सो दे करके, उसी क्षण दे करके उनके।
परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें। मैं परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव अपनी पीयूष वाणी से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव।
मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भई अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग निरंतर एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन हमें मिला है उसे हम कैसे सार्थक करें, उसे हम कैसे और अच्छा बना सकें। जीवन उसका अच्छा बनता है जिसकी दृष्टि निर्मल हो, जीवन उसका अच्छा बनता है जिसे अपने आत्मा और देह के बीच भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ हो, जिसे इस बात की समझ हो कि ये देहाशक्ति मेरे संसार को बढ़ाने वाली है, मुझे देह से भिन्न अपने आत्मा के प्रति रुचि होनी चाहिए। और जब एक बार देहाशक्ति दृष्टि के मिलने से घटने लगती है तो संसार ही मानो घटने लगता है। कभी गौर से देखें कि सुबह से शाम तक हम किस के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो हम पाएंगे कि हम अपनी देह के और दूसरे की देह के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। हम और अन्यत्र कहीं देख भी नहीं पाते हैं, ना हम सोच पाते हैं। जितनी देर धर्म करते हैं उतनी देर ये भले शक्ति से ऊपर उठ जाएं, बाकी तो पूरा समय इस देह की ही सेवा टहल में हमारा व्यतीत होता है। ये हमारी देह शक्ति तो है ही, हमें अगर एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई है जो इस आत्मा को देह से पृथक समझने के लिए हमें प्रेरित करती है तो उस दृष्टि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। भेद विज्ञान अगर किसी को हो जाता है तो उसके आचरण में जरूर से परिवर्तन आता है, भले ही वो अल्प परिवर्तन क्यों ना हो, पर परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कोई और देख पाए या न देख पाए, जिसके लिए भेद विज्ञान हुआ है, जिसकी दृष्टि निर्मल हुई है, वो स्वयं तो अपने आचरण को बहुत गौर से देखने लगता है कि मैं इस राग द्वेष के प्रपंच में कितना अधिक आसक्त हूं, या कि मैं इस राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील हूं। भेद विज्ञान है क्या चीज? एक तरह का साइंस ऑफ सेपरेशन है, एक तरह के पृथककरण का विज्ञान है। दो पृथक चीजें हमारे मोह के कारण एक मालूम पड़ने लगी हैं। मुझे सिर्फ ये जतन करना है कि मैं इन दोनों के अलग अलग स्वरूप को समझ करके इन दोनों को भिन्न महसूस कर सकूं। भिन्न मान लेना, जान लेना आसान है, हालांकि ये भी उतना आसान नहीं है, पर फिर भी भिन्न मानना और जानना अपेक्षाकृत आसान है भिन्न अनुभव करने के। जो व्यक्ति देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करने लगता है उसके लिए उसके आचरण में परिवर्तन आना बहुत आसान हो जाता है। हमारे अपने आचरण में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो हमें गौर से इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच मैं देह और आत्मा के पृथककरण के अनुभव की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं। इसे हम साइंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहें तो भी कह सकते हैं। यह एक तरह की पारदर्शिता का विज्ञान है। अगर ये हमें हो जाए तो फिर जो भीतर आत्मा दिखाई नहीं देती, मात्र देह हमें दिखाई देती है, देह के पीछे छुपी हुई उस आत्मा को भी देखने का हम उपक्रम करेंगे अगर हमें ये भेद विज्ञान प्राप्त हुआ है तो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जब मैं आचरण में परिवर्तन की बात कहता हूं तो मुझे लगता है कि आचरण में परिवर्तन की बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि ये चीज तो सहज रूप से परिवर्तित होना ही चाहिए थी। हम कितने कमजोर लोग हैं कि हमें दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान होने के बाद भी अपने आचरण को परिवर्तित करने की ललक उत्पन्न नहीं होती है, जबकि जो दृष्टि संपन्न है, आत्मज्ञान से संपन्न है, जो इतनी सब बातें सुनता और जानता है, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है। वे कषायें, वे राग द्वेष, वे संसार के प्रपंच ज्यों के त्यों बने रहते हैं और व्यक्ति बहुत ज्ञान और बहुत बाह्य क्रियाएं करने लगता है, तो बहुत आश्चर्य लगता मुझे। अपने जीवन में भी झांक के देखता हूं कि क्या सिर्फ आचरण में परिवर्तन कर लेने से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब तक तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था, मैंने तो अपने आचरण को कितना परिवर्तित कर लिया, लेकिन मेरी दृष्टि तो उसी राग द्वेष के प्रपंच को बढ़ाने की है। मेरी दृष्टि में वितरागता जब तक नहीं आई है, तब इस बाह्य सारे क्रियाकांड से होने क्या वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा अंदर महसूस होने लगता कई बार, आपको पता नहीं महसूस होता कि नहीं होता, आप जानो, लेकिन ये एहसास होना चाहिए अपने भीतर में, तब जाकर के हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ये हमारे अंतरंग में आना चाहिए कि टू एनफ, बहुत हुआ, बहुत कर लिया, राग द्वेष बहुत बढ़ा लिया, संसार मैंने अब बहुत, मैं इस प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, मैं इन सब चीजों से अपने को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। ये एहसास हमारे भीतर होना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ सचमुच मुझे वो दृष्टि मिल गई है, वो साइंस ऑफ मिस्ट्री, वो जो रहस्य था जीवन का, वो मालूम पड़ गया है। मेरे भीतर एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, मैं बाहर भीतर एक जैसा होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं देह में आसक्त होकर के अपना जीवन नहीं जी रहा हूँ, मैं आत्म रुचि पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्नशील, वरना इतनी सब चीजें कहने की क्या आवश्यकता पड़ती कि अभक्ष चीजों का त्याग करो, कि रात्रि में भोजन का त्याग करो, कि ये मत करो, कि वो मत करो। ये तो उनके लिए कहने की आवश्यकता है जो दृष्टि विहीन है। दृष्टि संपन्न व्यक्ति के लिए सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि मिल जाने के बाद ये सब चीजें ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूं आपो आप इनसे विमुख हुए बिना नहीं रहेगा। अगर नहीं विमुख हुआ है तो अभी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त नहीं हुई, अभी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ किताब का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। ये कसौटी हमारे लिए कितनी बार हम पर उपकार करके आचार्य भगवंतों ने अपने जीवन को परखने के लिए दी है, हम एक बार परख के तो देखें इस कसौटी पर कि क्यों मेरे जीवन में ये सब चीजें हैं, जानते समझते हुए भी, तब अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वरना वैसी स्थिति है अपन सबकी, तो मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप मुझे बिल्कुल अलग नहीं माने, मैं शामिल करके चलता हूँ अपने आप को। आपने इधर ऊपर बिठा दिया है, इससे ऊपर तो छिपकली भी बैठी रहती है, ऊपर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर से ऊपर होने में फर्क पड़ता है, ये मैं जानता हूँ बहुत ईमानदारी से। इसलिए बहुत कई बार मेरे मन में ये संसार के प्रपंच को देख करके और इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद भी व्यक्ति के भीतर अगर परिवर्तन नहीं आता तो एक बहुत छटपटाहट मुझे लगती है कि अरे ये हमारी चेतना, हमारे उपादान में कितनी कमजोरी है कि अच्छे श्रेष्ठ निमित्त मिलने के बाद भी हम अपने उपादान को जागृत करके अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते हैं और उसी प्रपंच में संसार में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति रोज सवेरे से वो पानी सींचने का फव्वारा होता ना, पानी भर लेते हैं और फिर उसमें से एक फव्वारे जैसी वो नली लगी रहती, उससे ऐसे सींचते हैं क्यारियों में पानी, पहले चलता था, आज भी वो फव्वारा पानी सींचने का चलता हो तो चलता हो, माली वगैरह बगीचे में उसका उपयोग करते हैं। तो वो आदमी रोज जो है फव्वारे में से पानी सींचता करता था कि मैं पानी सींच रहा हूं। पड़ोसी ने कई बार देखा कि उस फव्वारे को हिलाता तो है लेकिन उसमें से पानी वानी नहीं गिरता, तो उसने एक दिन कहा कि आप रोज फव्वारे से क्यारियों में पौधों में पानी सींचते हो लेकिन पानी तो कभी हमने गिरते नहीं देखा। तो उसने कहा जरूरत भी नहीं है, मतलब बोले वो फूल वगैरह जो लगे हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो अब वो और मुश्किल में पड़ा वो पड़ोसी कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये पानी ही नहीं गिरता, क्या कारण है, ये कहता कि पानी की जरूरत भी नहीं है गिराने की क्योंकि प्लास्टिक के फूल हैं। तो उसने कहा फिर ये उपद्रव करते काहे को, उसने कहा इसलिए ताकि पड़ोसी लोगों को ये भ्रम ना हो जाए कि ये प्लास्टिक के हैं, मैं रोज सींचता हूं, नहीं तो ये ज्यों के त्यों ऐसे लगे रहेंगे तो लोगों को संदेह हो जाएगा कि बिना पानी सींचे और ये ज्यों के त्यों कैसे लगे, मैं पानी सींचने का भी नाटक करता हूं। आया समझ में? आ तो क्या होगा, मैं रोज रोज भगवान के अभिषेक का, रोज रोज पूजा का, रोज रोज और सब स्वाध्याय का इस सब का फब्बारा लेकर के सींचता तो हूं, लेकिन फूल सब प्लास्टिक के हैं, जीवन में परिवर्तन कोई भी नहीं। आ गया समझ में? तो ऐसा न करना भैया, ऐसा करते तो कई जिंदगियां गुजर गईं। अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए ये सारी क्रियाएं हैं, चाहे व्रत नियम उपवास हो, चाहे भगवान की पूजा पाठ हो, चाहे तीन समय स्वाध्याय हो, सब एक ही उद्देश्य के लिए हैं। उस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि मैं कैसे इस देह से जो मेरी आत्मा पृथक है उस आत्मा की अनुभूति कर सकूं, उस पृथकता का अनुभव कर सकूं। मैं देह में रह करके उस देह की ही अनुभूति से सुबह से शाम तक सुख दुख का अनुभव करता रहता हूं, देह के लिए सुख के साधन जुटाता रहता हूं, दुख होने पर व्यथित हो जाता हूं, जबकि इस देह से मैं भिन्न हूं, ये एहसास करने के लिए ये सारी चीजें हैं। फिर चाहे हम पांच पापों का त्याग करने की सौगंध लें, और चाहे उन पांच व्रतों को धारण करके और एक बाउंड्री बनाने के लिए उन व्रतों की रक्षा और उन व्रतों की वृद्धि के लिए देश व्रत लें और अनर्थ दंड व्रत ग्रहण करें, और या कि आज हम भोगो भोग के परिमाण का विचार करें, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मैं जिस किसी तरह से इस देहाशक्ति से बचकर अपने आत्मा का अनुभव कर सकूं। जो मैंने कर्म बांध रखे हैं, जिनके वजह से मैं संसार में भ्रमण करता हूं, पंच परावर्तन करता हूं, उससे मैं ऊपर उठ सकूं, इसके लिए भोगो भोग की सीमा हम अपने जीवन में करें। इस पर हम कई प्रकार से विचार कर चुके हैं। आचार्य भगवंतों ने हमारी विषया शक्ति को घटाने, हमारे इंद्रिय और मन के विषयों को सीमित करने की सलाह दी है, सिर्फ इस वजह से कि जब ये देह मेरी नहीं है तब मैं इसमें इतना आसक्त क्यों होता हूं, और मुझे अपनी आसक्ति घटानी है तो मुझे इंद्रिय और मन के विषयों से पहले आसक्ति घटानी पड़ेगी, और ऐसे नहीं घटती इंद्रिय और मन के विषयों से आसक्ति, उनकी सीमा कर लूंगा तो हो सकता है कि जितनी सीमा मैंने रखी है उसके बाहर की चीजों से आसक्ति तो कम से कम घट जाएगी। ये अभ्यास जैसे बाल बोध अपन पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोगों के लिए यह अभ्यास करने की शिक्षा दी गई, और उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है कि ऐसे धीरे धीरे पहले मैं अपने भोग उपभोग के चीजों की सीमा करूं, उनसे आसक्ति घटाऊं, तब फिर मेरी देहाशक्ति घटेगी, और देहाशक्ति जिसकी जितनी कमती हो वही व्यक्ति आत्मा की तरफ रुचि बढ़ा सकेगा। वरना तो सुबह से शाम तक देह की सेवा शुश्रूषा में ही समय व्यतीत हो जाएगा, आत्मा की खबर लेने के लिए वक्त ही कहां मिलेगा। भोगो भोग के परिमाण के लिए थोड़ा सा समझ लें, ऐसी वस्तुएं जो एक बार ग्रहण में करने आने के बाद दूसरी बार फिर उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता, वे सब पांच इंद्रिय और मन के विषय, वे भोग पदार्थ कहलाते हैं, और जिन्हें हम एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से उनका उपयोग कर सकते हैं ऐसे पदार्थ उपभोग कहलाते हैं। भोजन इत्यादि तो भोग पदार्थ हैं, और वस्त्र आभूषण इत्यादि ये उपभोग की वस्तुएं हैं, कई बार हमारे उपयोग में आती हैं, इन सब को भी सीमित कर लेना। आज के समय में इन सब का हम लोग असीम उपयोग, अंतहीन उपयोग करने की जुगत में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक भोग और उपभोग की वस्तुएं जितनी अधिक हो सके मेरे पास उतनी अधिक हो, इसका प्रयत्न हम करते हैं, हमें इसकी सीमा करनी चाहिए। खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, सुबह से शाम तक के काम में आने वाली सारी चीजें, उन सब की हम सीमा बना लें तो हमारे जीवन में देहाशक्ति घट सकती है, हमें थोड़ा सा समय मिल सकता है अपने आत्म कल्याण के लिए। इसलिए ये प्रयत्न करना है। पांच प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ कहे गए हैं, अभी हम उनसे ही शुरू करें जिन चीज़ों में बहुत त्रस जीवों का घात होता है। ऐसे अभक्ष पदार्थ हैं जिसमें बहुत एक इंद्री जीवों का बहुत घात होता है। ऐसे बहुघात प्रकार के अभक्ष पदार्थ हैं जिनसे हमारे जीवन में प्रमाद उत्पन्न होता है। ऐसे भी अभक्ष पदार्थ हैं जो अनुपसेव्य हैं, सज्जन पुरुषों के द्वारा सेवनीय नहीं हैं। ऐसे भी अभक्ष पदार्थ हैं और अनिष्टकारी भी हैं जिनके ग्रहण करने से हमारे प्राणों की क्षति होती है। क्या इतना इतना विचार हम नहीं कर सकते? सब चीज़ों के बारे, सिर्फ खाने पे लागू नहीं करना, ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम और दूसरी चीज़ों पर भी, जो पहनने ओढ़ने की हैं उन पर भी लागू करें, तो हम देखेंगे कि हाँ सचमुच हम इन सब चीज़ों से बचकर, इन सब चीज़ों की पूर्ति ना करके इनसे समय निकाल के, मुझे लगता है कि आज जितने सुख सुविधा के साधन हैं उतनी आसानी होनी चाहिए जी जीवन जीने की। पहले लोगों के पास इतने सुख सुविधा के साधन नहीं थे, सवेरे से कब आधे पौन घंटे तो चूल्हा जलाने में ही लग जाए, फूंकते फूंकते आंखें आंसू भर से भर जाएं और धुएं से भर जाए पूरा का पूरा घर, और वो आधे घंटे पौन घंटे उसी में लग गया। और अब अगर जो है आटा पीसना है तो सवेरे 4 बजे उठ करके चक्की चलाएंगे तब घंटे भर में जो है और आटा रोटी बनाने के लायक बन पाएगा, और फिर मसाले पीसने में आधा पौन घंटे उसमें लग जाएगा। अब ये चीज़, इतने अच्छे साधन आ गए, अब तो बहुत आसानी से बटन दबाते ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। उधर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इधर मिक्सी में सारे पिसकर के मसाले आ जाते हैं, उधर मशीन में से जो है वो आटा आ जाता है। ये जो आधे आधे घंटे सब में लगता था वो समय चला कहाँ गया? हमने सोचा था कि ये साधन अपनाने से समय बचेगा तो मेरे धर्म ध्यान के काम में आ जाएगा, वो धर्म ध्यान के काम में ना आकर के मेरी देहाशक्ति के कारण किसी और देह की सुविधा में लग गया। ये जितनी देहाशक्ति है वो ही मेरे अपने जीवन को रेगुलेट करती है, वही मेरे अपने जीवन को चलाने वाली है। देखा जाए अगर तो कहते जरूर हैं कि हमारी आत्मकल्याण की रुचि है, लेकिन आत्मकल्याण की रुचि वाला ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ता। आप ही बताओ, पड़ता है क्या? हमारे सामने बैठे इसे हाउ कहियो ऐसो नहीं कह रहे, ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके कहना किसी अकेले कोने एकांत में कि सचमुच ऐसा है या नहीं है। अगर मेरी आत्मकल्याण की रुचि है तो मैं इतना फैला रहा काय को फैला रहा हूं, इतना संसार का प्रपंच काय को बढ़ा रहा हूं? पेट भरना ही है ना, इतना ही तो है, और क्या करना है मुझे? लेकिन उसी पेट भरने के लिए मैं सुबह से शाम तक प्रयत्न करता रहता हूं। ये विचार आना चाहिए, है बहुत छोटी सी चीज, दूसरे के कहने सुनने से नहीं, अपने भीतर से ये विचार क्यों नहीं आता? आना चाहिए, स्वयं आना चाहिए, तब ठीक ठीक भोगो भोग का परिमाण हो सकेगा। अकेले बाहर से सौगंध ले लेने से नहीं होगा, भीतर से ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। जिसकी भोगवादी दृष्टि है वो भोगो भोग का परिमाण कर भी लेगा तब भी भोगाशक्ति भीतर से नहीं जाएगी। वो तो जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि है वो व्यक्ति बाह्य में भोगोपभोग की सीमा अपने आप स्वतः ही कर लेगा। दो ही दृष्टियां हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण है या आध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। भौतिकवादी और भोगवादी दृष्टिकोण तो सारे संसार में दिखाई ही पड़ता है सुबह से शाम तक, लेकिन थोड़ा सा अपने दृष्टि में आध्यात्मिक चेतना भी हमारी जागृत होनी चाहिए, जिससे कि हमें स्वयं अपने जीवन में अपने आचरण को परिवर्तित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। साइंस के हिसाब से इन 5 चीज़ों का विचार करें तो ज़रा भी वैज्ञानिक नहीं है इन चीज़ों का ग्रहण करना, अत्यंत अवैज्ञानिक है। जिन चीज़ों में त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे मांस और मधु के बारे में सर्व प्रसिद्ध है कि ये दोनों चीज़ें ही दूसरे की क्षति और स्वयं के जीवन को भी नष्ट करने वाली हैं। ये वर्तमान में बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज़ को कह रहे हैं कि धीरे धीरे और हमें शाकाहार पर आना पड़ेगा। हमारा यह जो मांसाहार की प्रवृत्ति है वो योग नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के बैलेंस को गड़बड़ करने वाली है, पर्यावरण को असंतुलित करने वाली है। दूसरी तरफ जिसमें कि बहुत जीवों का घात होता है, जिसे हम लोग अदरक मूली गाजर जमीकंद कहते हैं, उन चीज़ों को भी आचार्य भगवंतों ने सीमित क्या पूरी तरह से छोड़ देने की बात कही है। कभी विचार करिएगा, अंडरग्राउंड रूट्स और अंडरग्राउंड स्टैम्प्स जो साइंस की भाषा में कहलाते हैं, वे ये सब चीज़ें हैं जमीकंद, जिनमें बहुत जीवों का घात होता है। भले ही एक इंद्री जीव हैं लेकिन अधिक प्रचुरता से उनका घात होता है। एक मूली एक गाजर खाने के लिए 6 महीने तक जीवित रहने वाले एक पूरे वृक्ष को नष्ट कर दिया जाता है, तब जाकर के हमारे हाथ में एक मूली और एक गाजर आती है। कभी ख्याल किया, जबकि खाने पीने की और भी चीज़ें हैं, पेट भरने की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है इसलिए खाना पड़ रहा है। 6 महीने तक वो वृक्ष जिंदा रहता है और वो वृक्ष अपने आड़े समय में जबकि उसे पानी और धूप नहीं मिलेगी, तब अपनी जड़ों में या अपने तने में भोजन सामग्री संचित करता है। ये रिजर्व फूड है उसका, चाहे मूली हो चाहे गाजर हो चाहे आलू है, उस पूरे 6 महीने तक जिंदा रहने वाले पेड़ का रिजर्व फूड है, संचित भोजन है, जिसे हम छीन लेते हैं और छीन क्या लेते हैं, उसका जीवन नष्ट करके छीन पाते हैं, वैसे नहीं छीन सकते। उस पूरे वृक्ष को नष्ट करना पड़ता जो 6 महीने तक जिंदा रहता। पेड़ में से एक फल तोड़ लेने से हमारा जीवन भी चलता है और पेड़ की क्षति नहीं होती, लेकिन ये ऐसा फल है जिसको कि हम छीनते हैं तो पूरा पेड़ नष्ट होता है। और एक स्क्वायर फीट फर्टाइल सॉइल में मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, ये किसी भी साइंस वाले से पूछा जा सकता है। इतनी मात्रा में अनंत जीव राशि जिसको अपन कहते हैं, अनंत काय जीव, वो उस मिट्टी में रहते हैं जिसके भीतर ये एक एक फिट नीचे तक ये चीज़ें होती हैं, उनको उखाड़ने में उन सब जीवों की क्षति होती है। वो बहुत अच्छा रिसोर्स है उनके लिए, पौष्टिक चीज़ें उनको मिलती हैं इसलिए, और बाकी मिट्टी में कम जीव रहेंगे जिसमें ये मूली गाजर और आलू उगते हैं उसके चारों तरफ, तो अनंत जीव राशि उत्पन्न होती, उस सब का भी घात होता। इतना सब बहुघात होने के बाद भी हमारी आसक्ति इन चीजों के प्रति अभी गई नहीं है। विचार करें थोड़ा सा, मुझे कहना कुछ नहीं है कि आप छोड़ दें, आप विचार करें। आप ज्ञानवान हैं, आप समझदार हैं, आप दृष्टि संपन्न हैं, ये कह रहा हूं आपको, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि हम सब ज्ञानवान दृष्टि संपन्न अत्यंत धर्मात्मा धर्मनिष्ठ लोग कहलाते हैं। इसके बाद भी हमारी प्रवृत्ति में अभी निवृत्ति नहीं आई है, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है, बाकी सब संसार की प्रवृत्ति संसार बढ़ाने वाली है। कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो संसार से पार कर सके, सिर्फ एक ही है जो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है, जिसमें वीतरागता के लिए मैं थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करता हूं ताकि मेरे वीतराग भाव में वो सहयोगी बने, मेरे राग द्वेष को घटाने में सहयोगी बने, उतनी ही प्रवृत्ति करता हूं, तो वो प्रवृत्ति मन वचन काय की संसार से पार लगाने वाली, बाकी सब प्रवृत्तियां जितनी हम करते हैं वो बढ़ाने वाली। कभी विचार करें इस चीज का, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन चीजों में हमारी आसक्ति सिर्फ एकमात्र वही कारण है जो हमें उन चीजों से मुक्त होने में बाधक बन रही है, और प्रमाद वर्धक चीज़ें ये भी धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में प्रवेश करती जा रही हैं। सब समझते हैं कि प्रमाद बढ़ाने वाली नशा करने वाली चीज़ शराब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शराब तो एक प्रतीक है मात्र, लेकिन कितनी चीज़ें शामिल हो गई। प्रश्न आते हैं तो समझ जाता हूँ कि कोई अभिषेक करने वाला भी बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा, तब तो प्रश्न आया है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी क्या अभिषेक करने की पात्रता रखता है। पंडित जी तो आ गए हैं, 3-3 प्रतिष्ठाचारी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेना कि अभिषेक करने वाले की कितनी योग्यता होनी चाहिए। मैंने तो इन्हीं लोगों से कुछ चर्चा करके और ये जाना कि जैसा आचार्यों ने अभिषेक के लिए जितनी पवित्रता बनाई है वो तो भगवान के छूने की पवित्रता पात्रता तक हमारे भीतर नहीं है। हम किस हाथ से भगवान को छू सकेंगे क्या? हमारे हाथ उतने पवित्र हैं नहीं। जिन हाथों से हमने एक भी धार्मिक कार्य नहीं किया, सिर्फ अपनी भोग विलास की सामग्री जुटाने में ये हाथ लगे रहे हैं, उन हाथों से क्या भगवान का हम अभिषेक कर सकते हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं? और अकेले स्पर्श करने से हाथ से भगवान के हम कभी पवित्र नहीं हो जाएंगे। भगवान के स्पर्श करने का मतलब है कि मेरे मन में वो बात आ जावे जो कि भगवान बनने में सहयोगी है, तो भगवान का स्पर्श मेरे जीवन को बदलेगा। वरना सब मूर्तियों के हाथ लगा लगा के भी माथे से नहीं पूरे शरीर से रगड़ लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये कह रहा हूं। थोड़ी कड़ी बात लगेगी लेकिन है तो ऐसा ही। जीवन क्यों नहीं बदल रहा? मैं तो ये देखता हूं, महीने भर होने को हो गया लेकिन आज भी कभी गौर से देखना कि मेरी कषायों में कोई परिवर्तन आया। इतने निमित्त प्रबल मिलने के बाद भी मेरे अंदर कषाय में मंदता आई, या कि अभी भी वही आंख है, अभी भी सारे संसार को उसी अपनी गंदी आंख से देखता हूं, वही दुर्भावनाएं मेरे भीतर आज भी हैं, वही राग द्वेष आज भी हैं जो आज से एक महीने पहले थे। अगर वैसे ही हैं तो ये चार महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे, और चार महीने क्या, 400 दिन नहीं, 4000 दिन नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी, तब भी मैं अपने वहीं के वहीं खड़ा रहूंगा, एक इंच भी नहीं हटूंगा। तो क्या लाभ हुआ मेरा इस सब चीजों का? ये विचार करना कभी तो शायद समझ में आए कि हाँ हो सकता है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं ये बात कि मेरे से अगर कोई पूछता है कि आपको कहाँ अच्छा लगता है, तो हाँ आज बहुत मेरे मन में थोड़ी सी बात है और मैं उससे व्यक्त कर रहा हूं आपसे। डायरेक्ट नहीं कह पा रहा हूं, इनडायरेक्ट कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ वहां अच्छा लगता है जहां राग द्वेष नहीं होता, जहां सब प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के दोष नहीं देख करके और एक दूसरे का सहयोग करके बढ़ते, वहां अच्छा लगता। बाकी इस संसार में कहीं अच्छा नहीं लगता। आप मुझे कहीं भी सोने के कमरे में बिठा देंगे सोना मढ़ करके तो भी अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे और जो भी सुविधाएं हैं वो भी दे देंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक ही चीज अच्छी लगती है। आप मेरे चरणों में बैठ करके घंटों पूजा कर लेंगे तो भी मुझे आनंद नहीं आएगा। मेरी जय जयकार में पंडाल नहीं, आप कुछ भी गुंजा देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है तो जहां प्यार से सब लोग रहते हैं, जहां एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आपस में और उत्साह पूर्वक जो है अपने कल्याण की ही चर्चा करते हैं, एक दूसरे के दोषों की चर्चा नहीं करते, वहां अच्छा लगता है। आप